दोस्तों, ईद कुर्बान के शुभ अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई पेश करते हैं। इस शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज ज़िलहिज महीने की 10 तारीख है। हाजी हज संस्कार के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज वे महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। यही नहीं, जो लोग हज करने के लिए मक्का नहीं गए परंतु आज के दिन वे भी कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के मांस को दरिद्रों और ज़रूरतमंदों में बांट देते हैं। बहुत से गरीब कुर्बानी के दिन की प्रतीक्षा में रहते हैं। आज बहुत से लोग महान ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने और दूसरों को खुशी देने के लिए कुर्बानी कराते हैं। वे एक दूसरे को ईद कुर्बान की बधाई देते हैं। विश्व के मुसलमान लगभग एक हफ्ते तक ईद कुर्बान की खुशी और जश्न मनाते हैं।
ज़िलहिज्जा महीने की 10 तारीख को वे अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज के धार्मिक कार्यों, विशेषकर ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से मिलने जाते हैं। यद्यपि कुर्बानी कराना हज संस्कार के अनिवार्य कार्यों में से है और यह हाजियों के लिए अनिवार्य है, परंतु दुनिया के बहुत से वे मुसलमान भी कुर्बानी करते हैं जो हज पर नहीं गए होते हैं। कुर्बानी वास्तव में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस परंपरा की याद दिलाती है जिसमें वो महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण प्रिय बेटे को कुर्बान करने के लिए गए थे, परंतु उनके बेटे के स्थान पर महान ईश्वर ने भेड़ा भेज दिया था और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के स्थान पर उसकी कुर्बानी की थी। सारांश ये कि हज़रत इब्राहिम की उसी कुर्बानी की याद में पूरी दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं।
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पालनहार की प्रसन्नता के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अमल से दिखा दिया कि वे अपने रचयिता की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। वे ईश्वरीय परीक्षा में सफल हो गए। वास्तव में जिस इंसान का दिल अपने पालनहार के प्रेम से ओतप्रोत हो और जिसका पूरा अस्तित्व ही अपने पालनहार और रचयिता के प्रेम के सागर में डूब गया हो, वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस कुर्बानी का परिचय दिया उससे सिद्ध हो गया कि उनका पूरा अस्तित्व अपने पालनहार के प्रेम के सागर में डूबा हुआ था। ये अपने पालनहार से प्रेम का ही नतीजा था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी।
दोस्तों, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए थे तो हज़रत इस्माइल ज़रा भी परेशान नहीं थे और उन्होंने अपने बूढ़े बाप से कहा कि हे बाबा, आपको जो आदेश मिला है उसे अंजाम दीजिए, आप मुझे धैर्य करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहिम ने जब अपने प्राण प्रिय बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए ज़मीन पर लिटाया और उसके गर्दन पर छुरी फेरने के लिए तैयार हुए तो महान ईश्वर ने उनकी प्रशंसा की और हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ा भेज दिया और फरमाया, हे इब्राहिम, जो कुछ तुमसे सपने में अंजाम देने के लिए कहा गया था उसे तुमने कर दिखाया। हम इस प्रकार भला काम करने वालों को प्रतिदान देते हैं और सच में ये खुली परीक्षा थी। हमने बड़ी कुर्बानी को उन पर कुर्बान कर दिया और बाद वाली जातियों व राष्ट्रों में उनके नाम को बाकी रखेंगे। इब्राहिम पर सलाम हो, वह हमारे नेक बंदों में से थे।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनेई ये कहते हैं कि ईद कुर्बान में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय राज पोशीदा है। वो ईश्वर के चुने हुए पैगंबर द्वारा त्याग है। अपनी जान कुर्बान करने से बढ़कर अपने प्राण प्रिय को कुर्बान करना है। वे अपने हाथों से अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे। یہ تیاگ ان مومنوں کے لیے آدرش ہے جو سچائی اور واسطوکتہ کے مارگ کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی سفلتا اور ایشوری پریکشا کی پرتیک ہے۔ ایشوری پریکشا ایک پرکار سے بندگی کی پریکشا ہے۔ پریکشا میں ہمیشہ ایک تیاگ و پریتیاگ ہوتا ہے۔
کبھی جان یا مال کا تیاگ ہوتا ہے، کبھی اس بات سے تیاگ دینا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان تیاگ کر سکتا ہے تو کر کے اپنے گنتویہ تک پہنچتا ہے، پرنتو اگر اپنی آنترک اچھاؤں پر نینترن نہ کر پانے کی وجہ سے تیاگ نہیں کر پاتا ہے تو رہ جاتا ہے، پریکشا میں سپل نہیں ہو پاتا ہے۔ واسطو میں پریکشا گنتویہ کی اور ایک قدم ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو امتحان ہوگا اس کا ارتھ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سفل ہو گئے تو جیون کے نئے چرن میں پہنچ جائیں گے۔ اس سمبندھ میں ایک راشٹر یا ایک ویکتی میں کوئی انتر نہیں ہے۔ اس دن پریکشا میں پاس ہونے کی وجہ سے ایشور نے حضرت ابراہیم کی پرشنسا کی اور ایک بڑا بھیڑ بھیجا تاکہ وہ اپنے بیٹے کے استھان پر اس کی قربانی کریں، اور حج سنسکار میں آگامی پیڑھیوں کے لیے ایک پرمپرا ہو گئی۔ ایشور نے حضرت ابراہیم کے نام کو بھاوی پیڑھیوں کے لیے امر کر دیا، ان کے عمل کو سویکار کیا، اور یہ بہت بڑی خوشخبری و سفلتا ہے جسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی۔
دوستو، روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری رکھی تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ وہ آواز ہے جسے عید قربان کے دن حاجی اور دوسرے مسلمان بارمبار دہراتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کا الیکھ ضروری ہے کہ انسان کے اندر اہنکار ایسی نیتک بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اہنکار وہ بیماری ہے جو ستیہ کو سویکار کرنے کے مارگ کی سب سے بڑی بادھا ہے۔ اہنکار وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا اور وہ سوئم کو حضرت آدم سے شریشٹھ سمجھنے لگا، یہاں تک کہ مہانیشور نے اسے اہنکاری بتایا اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور پرلے کے دن تک اس پر لانت ہوتی رہے گی۔
اسلام کا جب ادے ہوا تھا تو بہت سے عربوں کو یہ پتا تھا کہ اسلام سچا دھرم ہے اور پیغمبر اسلام اس کے سچے دوت ہیں، پھر بھی اہنکار کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اہنکار ایک ایسی نیتک بیماری ہے جسے اہنکاری اپنے لیے پسند تو کرتا ہے، کنتو وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ دوسرے اس کے ساتھ اہنکار سے پیش آئیں۔ اہنکاری کو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ جو اہنکاری ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی استھان نہیں ہوتا، لوگ اس سے کتراتے ہیں۔ اہنکار کے مقابلے میں ونمرتا ہے، اور ونمرتا و نیتک آبھوشن ہے جسے ہر انسان یہاں تک کہ اہنکاری بھی پسند کرتا ہے۔ ونمر اور سشیل ویکتی کو ہر انسان پسند کرتا ہے۔ دوسرے شبدوں میں میٹھی زبان اور نمر انسان کو ہر ویکتی پسند کرتا ہے۔ جو انسان مہانیشور کا سامیپیہ پراپت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اندر سے اہنکار کے ورکش کو کاٹ دے۔ جو انسان اپنے اندر سے اہنکار کے ورکش کو کاٹ دے گا تو اس کے اندر سدگنوں کے پودے اگیں گے، جس سے نہ کیول اسے بلکہ دوسروں کو بھی آرام و شانتی ملے گی۔
عام طور پر ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں پیسوں سے بہت پریم ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں پد اور شہرت بہت پسند ہے۔ इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें समाज के दूसरे लोगों पर वर्चस्व जमाने में बहुत आनंद आता है। सारांश यह है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ से लगाव रखता है। इस आधार पर हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर देखे कि वो किस चीज़ को अधिक पसंद करता है। जिस चीज़ को वो सबसे अधिक पसंद करता है उसी चीज़ को महान ईश्वर की राह में उसे कुर्बान करना चाहिए। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में ये कहा है कि तुम कदापि नेकी नहीं प्राप्त कर सकते मगर ये कि उस चीज़ को ईश्वर की राह में खर्च करो जिसे तुम पसंद करते हो।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई कहते हैं, ईद कुर्बान में एक बहुत बड़ा रहस्य निहित है। उस दिन ईश्वरीय पैगंबर हजरत इब्राहिम ने बलिदान दिया, जान से बढ़कर कुर्बानी दी। वो अपने हाथों से अपने प्राण प्रिय बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, वो भी उस जवान बेटे को जिसे महान ईश्वर ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बुढ़ापे में उन्हें दिया था। और हजरत इब्राहिम ने कहा था कि प्रशंसा है उस ईश्वर की जिसने हमें बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक को प्रदान किया। हजरत इब्राहिम को काफ़ी समय की प्रतीक्षा के बाद महान ईश्वर ने उन्हें दो बेटे प्रदान किए थे और उसके बाद उन्हें दूसरी संतान की प्रतीक्षा भी नहीं थी। इस प्रकार के हालात में हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को महान ईश्वर की राह और उसके प्रेम में कुर्बानी दी और ईश्वरीय परीक्षा में सफल हुए।
ईद कुर्बान हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल द्वारा दी गई महान कुर्बानी की याद दिलाती है। पवित्र कुरान में हम पढ़ते हैं कि हजरत इब्राहिम ने स्वप्न में देखा था कि वे अपने बेटे हजरत इस्माइल को महान ईश्वर की राह में कुर्बान कर रहे हैं। रोचक बात यह है कि वर्षों के बाद हजरत इस्माइल पैदा हुए थे और वर्षों बाद हजरत इब्राहिम को पुत्र होने के आनंद का आभास हो रहा था, फिर भी वो पूरी निष्ठा के साथ हजरत इस्माइल को उस जगह पर ले जाते हैं जहां उन्हें कुर्बानी करनी थी। अलबत्ता महान ईश्वर का उद्देश्य केवल हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेना था और वो परीक्षा में पूरी तरह कामयाब हो गए। शैतान ने बाप बेटे को अपने निर्णय से पीछे हटने के लिए बड़ी कोशिश की परंतु वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सका। जब भी शैतान हजरत इब्राहिम को बहकाना चाहता था तो वो पत्थर मारकर उसे दूर भगाते थे।
बहरहाल ईद कुर्बान हज संस्कार का अंतिम व सुंदर अमल है जिसे हाजी महान ईश्वर का सामिप्य प्राप्त करने के लिए अंजाम देते हैं और दुनिया के समस्त मुसलमान इस अवसर पर खुशी मनाते हैं। तो इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हम एक बार फिर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं।